जो दूसरे का अहित करे उसको खल कहते हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, उसका भाव है, एक बार एक व्यक्ति वन में गया, जंगल में गया, और अपने साथ आटा चावल घी जो भी था सब लेकर के गया था, और ऐसे रह रहा था जंगल में रह रहा था। तो एक दूसरा व्यक्ति उसका परिचित मिल गया, परिचित नहीं अपरिचित था, वो मिल गया तो पूछा कस्तम भद्र, हे सज्जन आप कौन है? तो कहता है खलेश्वरो हम, मैं खलेश्वर हूं। खलेश्वर है कस्मा घोरे बने स्थिते, तो इस घोर वन में आप क्यों हैं, क्यों रुके हुए हैं? तो कहता है व्याघ सार्दुलाद भीर खाद्यो हम इत्याशय। वो कहा कि मैं वन में इस आशय से हूं कि हमारे शरीर को कोई बाघ या सिंह खा जाए। तो वो पूछा कि इतना घोर निर्णय आप क्यों किए हैं, अपना शरीर बाघ और सिंह को क्यों खिला देना चाहते हैं? तो वो कहा कि मैं इसलिए अपने शरीर को खिलाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे शरीर को खा करके बाघ और सिंह को आदत हो जाए मनुष्य को खाने की। तो जो भी जंगल में आएंगे उनको ये लोग खाया करेंगे। मैंने सुना है कि मनुष्य का मांस बहुत मीठा लगता है बाघ सिंह को, तो अभी ये लोग खाए नहीं है जंगल में किसी मनुष्य, तो मैं चाहता हूँ मैं खिला दूं तो उनको चस्का लग जाए और जो भी मनुष्य आएंगे उनको ये खाया करेंगे, इसलिए ही मेरा निर्णय। तब तो कहा कि हाँ निश्चित खलेश्वर ठीक है धन्य है। इस तरह के लोग तो खल कि अपना देह नष्ट करके भी दूसरे को नष्ट करने की सोचना, ठीक इससे विपरीत विचार वाले को सज्जनेश्वर कहें, सज्जनों में श्रेष्ठ, कि अपना अहित करके भी दूसरों का हित करते हैं, उनको वास्तव में संत कहते हैं, सज्जन कहते। मतलब अपना समय कुछ बर्बाद हो जाए, अपना पैसा बर्बाद हो जाए, लेकिन उसके चलते दूसरों का हित हो तो वो करने के लिए तैयार है। और खल तो सीधा पिसान ले करके दूसरे का अहित करते, अपना देह दे करके भी दूसरे का अहित करते, ये खल था करते। भगवान ने इतना फल बनाया है दुनिया में, सब इसी तरह से लोग रोक रोक करके रखे, किसी को खाने ना दे, वो सब धनुकासुर। आजकल के तो युग में पता नहीं क्या हो गया है, कोई फल का वृक्ष नहीं लगा रहा है, कुछ लगे हुए हैं वे सारे फल पहले बाजार में चले जाते हैं। इस तरह से फ्री लड़कों को खाने के लिए फल नहीं मिलता है ना, कहीं नहीं खाने को मिलता है। तो आजकल के युग में ऐसा होता जा रहा है कि भगवत भावना का, कृष्ण भावना का ज्ञान बच्चों में बहुत कठिनाई से आ पाएगा। कारण इसका यह है कि लोग प्रकृति में नहीं जी रहे हैं, जो भी वस्तुएं हैं वो कृत्रिम ढंग से मिल रही हैं। जानते हैं शास्त्र जब भगवत भक्ति का उपदेश करता है तो सबसे पहला उपदेश शास्त्र का यही है, जतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जीव को सोचना चाहिए कि सब कुछ जिनसे उत्पन्न होता है वे हैं प्रभु, वे हैं भगवान, हमारा भी जन्म उनसे हुआ है और हमारे जीवन में जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं सब भगवान दे रहे हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए, तब जीव भगवान को समर्पण करता है। लेकिन आज के युग में वस्तुएं जो हैं विकृत रूप में आ रही हैं, इनडायरेक्ट में आ रही हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है कि वास्तव में भगवान दे रहे हैं। जो बच्चा कभी गाय दूहते हुए नहीं देखा है, उसको बताया जाए कि ये दूध गाय से आता है तो कैसे समझेगा? वो तो कहेगा नहीं तो स्टोर हाउस से आता है, वो यही कहेगा ना, देखा ही नहीं कि गाय कब दूही जाती है, कहाँ दूही जाती है। कुछ लड़के आगे चलकर प्रश्न करेंगे, क्या दूध गाय से बनता है? करेंगे प्रश्न। अभी भी ये प्रश्न बनने लगा। मैं एक बार वृंदावन से गोवर्धन जा रहा था बस पर, तो हमारे साथ हमारे गुरु भाई बैठे थे, कविचंद महाराज जापान में प्रचार करते हैं। वे सरसों के पौधों को देख पीला पीला फूल लगा था, तो महाराज पूछे कि ये क्या चीज है, तो मैं कहा कि मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट तो पूछे इसका यूज क्या है, मैं कहा कि इसके सीड से, इसके बीज से तेल निकलता है जिसको मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा मस्टर्ड सीड से तेल निकलता है। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, वो तो शहर में रहने वाले व्यक्ति कभी जानते नहीं है कि मस्टर्ड के बीज से, सरसों के दानों से तेल निकलता है। और वास्तव में कोई नहीं देखा है, न पेरते हुए देखा न मशीन देखा पेरने वाले, तो कैसे समझेगा। हम लोग तो सहज समझेंगे, खास करके मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, जो अपने सिर पर सरसों का दाना लेकर के पेराने गया है मिल में और पेरा करके तेल लाया घर पर, तो क्यों नहीं समझ जाएगा। ये दूसरे के लिए कठिन है, बहुत कठिन है। किसी भी वस्तु का एक तो कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, उत्पादन नहीं भी किया लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरर लिख करके और मुहर लगा देना ये दे रहा है। कोई भी चीज पर, इधर तो स्पेशली अमेरिका में कोई भी चीज देखिए तो उस पर मैन्युफैक्चरर का नाम दूसरा लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, वो लिखा हुआ। जैसे इधर देखते हैं ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस तो वृक्ष से बना हुआ है, फल से बना हुआ है, ऑरेंज से बना हुआ है। तो बताना चाहिए किस तरह से धरती से ऑरेंज उत्पन्न होता है और ऑरेंज से रस निकाला गया है, ये सब ज्ञान देने की आवश्यकता है कि वास्तव में सब कुछ भूमि से निकल रहा है और भूमि भगवान की शक्ति है, भगवान कृष्ण ने भूमि बनाया है, तो अंततः कृष्ण हमें जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। लेकिन आजकल जो कुछ भी है सब स्टोर से आ रहा है, जो कुछ भी है, और उस पर आदमी का या कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा है मैन्युफैक्चर बाय गॉड, किसी पर नहीं लिखा हुआ है ना। न वो भी लिखा रहता तो आज आगे के बच्चे पढ़ते कि भाई भगवान का बनाया हुआ है, और जबकि सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, कुछ भी आदमी का बनाया हुआ नहीं, केवल रूपांतरण किया हुआ है थोड़ा सा, मूल रूप में कुछ भी बनाया हुआ आदमी का नहीं। हम तो कहते हैं कि यदि एक मच्छर के, मस्कीटो की टांग टूट जाए तो सारी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर एक टांग की मरम्मत नहीं कर सकते। वास्तव में उनसे कहा जाए तुम बाहर का कोई सामान मत लो, अपना कुछ बनाओ, तो अपना क्या बनाएगा, अपना वो क्या निकालेगा, क्या बना सकता है, कैसे क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। तो पहले के युग में ऐसे लोगों को फल खाने को मिलता था खरी, आज भी भारतवर्ष में कई ऐसे रोड हैं जहाँ जिन रोडों पर आम लगा हुआ है और लड़के गर्मी के दिन में आम खाते रहते हैं, आज भी देखा गया है। खास करके मध्य प्रदेश में मैं देखा बहुत से आम अब पकना चालू हुए हैं, लड़के खाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी तो इस तरह से भगवत ज्ञान होने के लिए इस बात को दिखाना आवश्यक है कि जीवन की सारी आवश्यक वस्तुएं भगवान द्वारा दी जा रही है संपूर्ण रूप से, कोई दूसरा नहीं दे रहा है। तो खल उसको कहते हैं जो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तुओं का उपभोग न होने दे और बल्कि अपना जीवन बर्बाद करके दूसरों के दुख की व्यवस्था कर, उसको खल कहते हैं। धेनु के खल था और बहुत बलवान था, फल वहां पर सड़ जाते थे गिर करके, लेकिन किसी को खाने के लिए अनुमति नहीं। कुछ है और क्या बात थी, क्यों नहीं खाने देते, बस इतना दिखाने के लिए कि मैं कंट्रोलर हूं बस, किसी की मजाल नहीं है कह सकते। कंट्रोलर हो, ईश्वर हो तो पालन करो, जो दूसरा प्रकृति ने दिया है फल, भगवान ने दिया है, किसको खाने दो, तो नहीं खाने नहीं दूंगा, यही हमारी ईश्वरताई है, किसी को खाने नहीं दूंगा। तो आज आ गया असली ईश्वर, अब पता चलेगा। भगवान जब इस जगत में आते हैं तब दिखाते हैं मैं ईश्वर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, और दंडित दंड देते हैं खूब क्रूरता से। ऐसा नहीं है कि भगवान धर्म का प्रचार करने आवे और उनको ही कोई दंड दे दे इस दुनिया में, उनको ही फांसी पर चढ़ा दे, तब तो भगवान ऐसे आएगा नहीं डर कर। भगवान कहते मैं आता हूं तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय से दुष्कृता, मैं दुष्टों का दमन करता हूं, साधुओं की रक्षा करता हूं। भगवान इस तरह आते हैं, ये भगवान है, कृष्ण भगवान है, इस तरह से आए किए। तो आया और श्री बलराम जी के छाती पर दोनों दुलत्ती मारा, पीछे मुड़ करके काश शब्द का अर्थ रेखना, जैसे गधा रेखते हैं, गधे के बोली को रेखना कहते हैं हिंदी में, वो रे का बहुत जोर की आवाज किया और पीछे मुड़ करके दुलत्ती मार बलराम जी के छाती में मारा। परिशरत, लेकिन वो लगा नहीं, थोड़ा दूर पड़ गया, वो मारा लेकिन उस चरण लगा नहीं, फिर चला गया दूर। अब देखा कि इस पर लगा नहीं तो उसका क्रोध और बढ़ गया, उसका वार विफल हो गया, प्रहार विफल हो गया, तो इसलिए वो दुखित हुआ। और कुछ दूर जा करके फिर आया, फिर मुड़ करके और बलराम जी पर दोनों लात चलाया, उसके दोनों पैर को श्री बलराम जी पकड़ लिए और एक हाथ से दोनों पैर पकड़ लिए। ये आश्चर्य की बात है, दोनों हाथ नहीं लगाना पड़ा श्री बलराम जी को। देखिए, और देखने में उतने छोटे बच्चे हैं, जब ही उसके दोनों चरण निकट आए तो भगवान ने सोचा, श्री बलराम जी ने सोचा कि ठीक है, चरण दे रहा है तो चरण ही लेना चाहिए। ऐसे जो चीज अर्पित कर रहा है उसी को लेना चाहिए। चरण पकड़ लिए उस खाल का, गधे का, और चरण पकड़ करके और घुमाए, प्राक्षिपत रूसा घुमा करके और एक ताल वृक्ष के ऊपर मारे जोर से। तृण राजाग्रह, तृण को ताल वृक्ष को वास्तव में वृक्ष नहीं तृण कहा जाता है, तृण राज है यहाँ, तो उसके मस्तक पर मारे जहां फल लगा हुआ था, तो उस पर इतना जोर से मारे बलराम जी को, ताल वृक्ष गिरा तो उसके साथ से दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, इस तरह से बहुत से ताल वृक्ष गिर गए एक बार के मारने से, इतना जोर से उन्होंने घुमा करके मारा। सतम गृहत्वा प्रपदोर भ्रामी पैक पाणिना, एक पाणिना है यहाँ लिखा गया, एक हाथ से चरण दोनों पकड़ करके और घुमा करके जोर से मारे। तो भ्रामरत त्यक्त जीव था, तो घुमाने से ही उसका जीवन चला गया था, मर चुका था केवल घुमाने से, और उसके मरे हुए देह को ताल वृक्ष के अग्र भाग पर उन्होंने मारा। तेना हतो महाताल वेप मान बृहद शिरा पार्श्वस्थम कंपियन भग्न सच्चान्यम सोपिचा पर, इतना जोर से मारा कि बृहद शिखा वाला वह वृक्ष अपने निकट के वृक्ष को गिरा दिया, उसने फिर अपने निकट को गिरा दिया, इस तरह से कई वृक्ष गिर गए, भराशाई हो गया। और उन वृक्षों के गिरने से बहुत बड़ा शब्द हुआ, उसके देह के गिरने से और वृक्षों के गिरने से, तो और जितने भी गधे के रूप में असुर थे सब दौड़, ये क्या हो गया, इतना घनघोर शब्द क्यों हो रहा है। तो ये सब लोग आने लगे और ठीक उसी तरह से प्रहार करने लगे, तो श्री बलराम जी अब सबका पैर पकड़ पकड़ कर उसी तरह से मारना चालू करते थे ताल वृक्षों पर। एक ही लीला चल रही, पकड़ना, घुमाना, घुमाने में ही वो मर जाते थे, इसके बाद फेंकते थे। ये है अनंत बलशाली भगवान की लीला, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा श्री बलराम जी को, खेल खेल में जैसे वो ढेला फेंक रहे हैं वैसे पकड़ पकड़ करके मारते गए। ब्रज में भगवान कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं लिए, मथुरा जब गए तो प्रथम बार हाथी का दांत लिए, वो भी हाथी को मार करके दोनों भाई हाथी दांत लिए थे। ब्रज में कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं थे, किसी को तमाचा मार देते थे, किसी को घुमा करके मार दिए, किसी के मुंह में हाथ डाल दिए, जैसे केसी दानों के मुख में हाथ डाल दिए, अघासुर के पेट में जा करके बढ़ गए, बकासुर की चोंच फाड़ दिए, उसके कंठ में जलने लगे, किसी को पैर से उलाड़ दिए सकटासुर को, किसी को ओठों से मार दिए जैसे पुतना को, कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए। ये भगवान की भगवत्ता है। तो इस तरह से जैसे महावाते रिताई हो, लगा कि जैसे महा आंधी उठ गई हो, इस तरह से वृक्ष गिर गए बहुत से और बहुत जोर के शब्द हुए। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ओहो ये अद्भुत लीला है श्री बलराम जी की। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नैतत् चित्रम भगवती यनन्ते जगदीश्वरे, जो जगत के वास्तविक ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं और छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, ऐसे भगवान बलराम जी के लिए कोई विचित्र बात नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। उत्तम प्रोतम इदम जस्मी तंतु स्तंग जथा पट, ये सारा जगत श्री बलराम जी में उत्तम प्रोत है, उसी तरह से जैसे वस्त्र के सूक्ष्म डोरे एक महान वस्त्र से बंधे हुए होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं बितान टेंट, तो कुछ ऐसी रस्सियां होती हैं जिन पर वो सारा टीका होता है, मोटी मोटी रस्सियां बीच में होती हैं। तो श्री बलराम जी इस तरह से सारा जगत उन पर टीका हुआ है, सारे जगत की सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, पालन करते हैं। तो जो इस तरह जगत का पालन करता है, प्रलय करता है, उसके लिए गधा को इस तरह से मारना कौन बड़ी बात है? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य मत कीजिए, कथा सुन करके परीक्षित महाराज आश्चर्य कर रहे थे, तो कहते ये आश्चर्य नहीं है उनके लिए, तो खेल है। तथा कृष्णम च रामम च ज्ञातो धनकस्य कुष्ठारोग्यद्रोण सर्वे समृद्धा हतवान, तो और जो उसके बचे हुए बंधु थे वे सब गधा के रूप में आए। तो बलराम जी के पास दूसरे नंबर में नहीं है, कृष्ण के पास आए। उन गधों ने सोचा कि ये बलराम बहुत बलवान है, ये धनुकासुर को मार दिया तो कृष्ण को मारना चाहिए, तो वे आए। तो कृष्ण भी वही स्टाइल अपनाए जो बलराम जी ने अपनाया था वही। और छोटे छोटे गधे भी आए, वे भगवान के सखाओं पर चलाए दुलाती, तो वे लोग भी बलराम जी का स्टाइल अपनाए सभी। वे सब गधा के रूप में आते थे और दुलती मारते थे, तो भगवान के पक्ष के सभी लोग चरण पकड़ पकड़ कर और वही घुमा घुमा करके मारने लगे। यह बहुत लीला हुई, प्राय सभी सखाओं ने एक दो गधा मारा, सबने मिल करके इस तरह से। उधर से वे लोग धनुकासुर की नकल करते थे, ऐसे गधों का स्वभाव भी होता है, उसी तरह से चलाते हैं दुलत। और इधर से भगवान श्री कृष्ण लीला किए, बलराम जी लीला किए और भी जितने सखा थे सब लीला किए। पांच ताना पत्थर कृष्ण रामश्चर लीलाया गृहित पश्चात चरण प्राहिणोत तीर्ण राजस्व, और कोई भी व्यक्ति कोई सखा कृष्ण या बलराम कोई भी गधा को मारता था तो नीचे नहीं फेंकता था, ताल के वृक्षों पर ही सब फेंकते थे, मतलब उसको गिराना चाहते थे, फल गिराना चाहते थे। तो बच्चे कोई ढेला मारते हैं आम गिराने के लिए, वृक्ष में से आम गिराने के लिए कुछ मारते हैं, तो ऐसे मरे हुए गधों से ताल फल गिराते थे, ऐसे मार करते सभी यही लीला किए। लेकिन एक बार गिरने के बाद दोबारा किसी गधे को नहीं उठाते थे, इतनी अधिक संख्या में गधे थे कि बारी बारी से आते थे, पकड़ पकड़ कर घुमा घुमा कर और ऐसे फेंकते थे, घुमा घुमा कर फेंकते थे। तो सैकड़ों सखा थे और सैकड़ों गधा थे, इस तरह से आए, इस तरह से मारते मारते लगभग पूरे वृक्ष गिर पड़े, वहां धराशायी हुए। और ताल फलों से और मरे हुए गधों से वह भूमि भर गई, सब जगह फल भी दिखाई पड़ रहे थे, गधे भी दिखाई पड़ रहे थे, तो कोई फल खाया नहीं। लिखा गया है कोई फल कोई लड़का फल नहीं खाए, क्योंकि सब जगह गधा मरे हुए थे तो फल कोई नहीं खाए। भूमि और मरे हुए गधों के देह से भरी हुई है भूमि और ताल वृक्षों के अग्र भाग से भरी हुई और भूमि ऐसी लगती थी जैसे बादलों से घिरा हुआ नभस्तलम आकाश। आकाश में कभी कभी बादल भर जाते हैं तो विविध प्रकार के बादल होते हैं आकाश में, कोई उजला होता है, कोई काला होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। तो फल प्रकर संकीर्ण, फल कहीं कहीं बिखरे हुए थे जगह जगह, और मरे हुए गधों के देह और ताल के वृक्ष, कोई कोई हरा भरा लग रहा था, कोई पीला लग रहा था, कोई काला। तो जैसे आकाश सुंदर लगता है कई प्रकार के बादलों से मेघों से, इस तरह से वह ताल वन सुशोभित हो रहा था। तयस्तत सुमहत कर निशंग दुविधा दया मुमुचु पुष्प वर्षाए चक्रोद्याम तुष्टु। तो श्री कृष्ण और बलराम के इस सुमहत कर्म को देखकर देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे और स्तुति करने लगे। यहाँ पर लिखा अथ ताल फलान आदन मनुष्य गत साधुसा तृणम च पश्वस्य हत धेनु काम। इसके बाद ताल फल को वहां के मनुष्य खाने लगे, उनका भय दूर हो गया, मनुष्य खाने लगे, मतलब जो वन में कोल भील आदि रहते थे वे लोग खाने लगे। भगवान के सखाओं ने नहीं खाया, यहाँ टीका में बात लिखी गई है उन श्लोकों के अनुसार। मनुष्य फलानी आदर न तो कृष्ण सखा है, कृष्ण के सखा फल नहीं खाए, तो गए थे फल खाने के लिए लेकिन कोई नहीं खाया। तृण च पशु हत धेनु कानन, और पशु तृण चरने लगे, गौएं तो तृण चरने लगी। गौओं को कोई गम नहीं था कि हमारा गधा पड़ा है क्या पड़ा है, लेकिन भगवान के सखा फिर फल नहीं खाए। मनुष्य शब्द का प्रयोग है, पुलिंदाद अर्थ करते हैं सनातन गोस्वामी का, वन में रहने वाले पुलिंद वनवासी मनुष्य वो फल खा रहे थे, भगवान के सखा फल नहीं खाए। तो उस समय से उस वन में सब लोग घूमने लगे, अब पशु मनुष्य पक्षी आदि सब घूमने लगे, अब भय चला गया। तो यह उस दिन की लीला है जिस दिन कृष्ण प्रथम दिन गोचारण करने गए थे। अच्छा, तो अब कृष्ण के ब्रज लौटने की लीला का वर्णन कर रहे हैं। यह एक दिन की विशेष लीला है, प्रतिदिन जैसे शुरू में कहा गया वैसी लीला कृष्ण करते थे, और प्रतिदिन शाम को लौटते थे, इसको सांझी लीला कहते हैं। ये प्रत्यावर्तन लीला, जिस तरह वन में जाते थे तो उस तरह लौटते थे, लेकिन लौटते समय गोपी जनों को बहुत सुख मिलता था और वन में जाते समय बहुत दुख होता था, और लौटते समय ब्रजवासियों को दर्शन होता था जो गांव में रहते थे, सामने से देखते थे कृष्ण आ रहे हैं। इसलिए यह आनंद की लीला है, इसका वर्णन अधिक किया जाता है शास्त्रों में। तो कृष्ण कमल पत्राक्ष पूर्ण श्रवण कीर्तन स्तूयमानोनु गए गोपै साग्रजो ब्रजमा ब्रजत। दुग्गोचारण आदि करके संध्या के समय श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गौओं के साथ लौट रहे हैं। तो अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण कमल पत्राक्ष, कृष्ण की आंखें कमल कर्णिका के समान है, सुंदर नेत्र हैं। अच्छा, पुण्य श्रवण कीर्तन, और उनकी कीर्ति का श्रवण और कीर्तन जीव की अविद्या का नाश करने वाला है। तो अपने सखाओं के द्वारा स्तुयमान प्रशंसित श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में लौट रहे हैं। तो ब्रज में लौटते समय श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, तंगो रजस्छुरित कुंतल बद्ध वरहा वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु हासम वेणु क्वणंत मनु गैरम गीत कीर्तिन गोप्यो दिदृक्षित दृशो जगमन समेतः। श्री गोपी जनों के सौभाग्य का वर्णन करते हैं, इस लीला का वर्णन कर रहे हैं। तम गो रजस छुरित कुंतल बद्ध वर, श्री कृष्ण के कुंतल पर, केशों पर गायों के खून का रज पड़ा है, इस तरह से श्री कृष्ण लौटते हैं। गौएं आगे आगे चलती हैं, अगर पीछे से श्री कृष्ण चलते हैं तो गौओं के खून से उड़ी हुई रज श्री कृष्ण के केश कलाप पर पड़ी हुई है, रज से धूमिल है केश, और सुंदर सुंदर पुष्प गुथे गए हैं केशों में, इसके साथ ही साथ बनमाला पहने हैं, और खूब सुंदर दृष्टि है, मंद मधुर मुस्कान है, और इस तरह से वेणु क्वणंतम, श्री कृष्ण वेणु का क्वणन कर रहे हैं, वेणु वादन कर रहे हैं, और सखा उनकी कीर्ति गा रहे हैं, इस तरह से लौटे, और गोपियां उनको देखने की लालसा से अपने अपने घरों से निकल करके छत पर चढ़ गई थी, बाहर आ गई थी देखने के लिए। तो उनका एक एक क्षण करोड़ों करोड़ों युग के समान बीतता था कृष्ण के विरह में, इसी प्रतीक्षा में रहती हैं कि कृष्ण कब लौटेंगे, कब लौटेंगे। और यह प्रतिदिन की लीला है, प्रतिदिन गोपियां दिन में श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल रहती थी, शाम को उन्हें थोड़ा सा आनंद मिलता था, इन भी थोड़ा आनंद मिलता था, फिर कृष्ण अपने घर में चले जाते थे, तो फिर रात भर का विरह रहता। इस तरह से, लेकिन कभी कभी श्री कृष्ण रात्रि में रास विहार करते थे, इसलिए गोपी जनों को सुख होता था, बाकी समय में तो विरह में मरती रहती थी, तो शाम के समय उन्हें आनंद आता था। तो उस लीला का वर्णन कर रहे हैं, यह बहुत सुंदर लीला है, जबकि श्री कृष्ण के केश पर गौओं के खुर का रज पड़ा है। सवेरे जाते थे तो सवेरे उनका मुख दिखाई नहीं पड़ता था, पीछे से दर्शन होता था, और अभी धूल उठती नहीं थी उतनी, इसलिए उनके केशों पर धूल नहीं जमी रहती थी। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के केशों पर घोड़ों के टाप से उड़ी हुई धूल रहती है। तुरंत रजो विधुम्र विश्व कचलित श्रृंगार अलंकृतास, भीष्म पितामह ने वर्णन किया। और वृंदावन में गोरज छिरित, छिरित मन व्याप्त, गायों के खुर से उड़ी हुई रज व्याप्त रहती है। भक्तजन भगवान के इस शोभा का ध्यान करते हैं अष्टकालीन लीला में, शाम को लौटने की लीला, गोपियों के झुंड में खड़े होकर। हिंदी भाषा में एक बहुत सुंदर कवि हुए हैं, वो मुस्लिम थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में विभोर हो गए, उनको रसखान कहते हैं। हिंदी भाषा पढ़ने वाले लोग जानते हैं, रसखानी जी की कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं भगवान कृष्ण पर। तो ये सांझी लीला का वर्णन किया, एक कविता है उनका बहुत सुंदर, हम लोग कभी कभी उसे गाते थे, इसी श्लोक का उन्होंने अनुवाद किया है। गोपियां देख रही हैं और आपस में वर्णन कर रही हैं, तो वो इस तरह से पद है, गोरज विराजे भाल लहल ही बन माल, आगे गई पाछे ग्वाल गावे मृदु तानरी। तो स्पष्ट है शब्द, गोरज विराजे भाल, भाल मने शेर, गोरज बिराजे भल्लाही बनमाल, और बनमाला बहुत फ्रेश है, बहुत सुंदर लग रही है, तो उस पर भी गोरज पड़ गया है। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु तानरी, गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु तानरी। कोई गोपी बोल रही है, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, वैसी बंक चितवनी मृदु मंद मुस्कानी रे। देखो देखो कृष्ण की चितवन कैसी है, कैसी मंद मुस्कान है, कदम्ब बीटप के निकट तटनी के आया, आटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे। फिर वो कह रहे कि देखो कदम बिटप के निकट वे आ गए हैं, कटनी जमुना के निकट आ गए हैं, और आटा पर चढ़ करके अटारी पर चढ़ करके उनके पीत पट की फहरानी देखो, चाहे मैंने देखो, ब्रजभाषा में होता है देखो देखो पीत पट कैसा लहरा रहा है। कदम बिटप के निकट तटनी के आया, आटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे, रस बरसाए ताना तपन बुझावे, नैना प्राण नीरी झावे, वह आवे रस खानी रे। देखो देखो दिन भर की जलन मिटा रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, हमारे आंखों को और मन को रिझाते हुए रस खानी आ रहे हैं। रसखानी कवि का नाम भी है, और रसखान का अर्थ होता है रस का खान, ये रस का खजाना आ रहा है। देखो आ रहे हैं आ रहे हैं, तो सभी गोपियां अपने अपने घरों से निकल कर कृष्ण को देखने लगती है। तो इसको संध्या लीला कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण जो मंद मुस्काते हैं तो उनके मन को अतिशय हर्षित करती है यह मुस्कान। खास करके ब्रजवासी जो घर पर रहते हैं गोपियां, तो चिंतित रहती हैं कि हमारे प्रियतम गाय चराने गए हैं, वन में गए हैं, उनको बहुत दुख हुआ होगा, दिन भर पैर में कांटे गड़ते होंगे, पत्थर गड़ते होंगे। लेकिन श्री कृष्ण शाम को जब आते हैं, उनका खिला हुआ चेहरा, प्रसन्न चेहरा रहता है, तो उसको देख करके गोपियों का शोक दूर हो जाता है, तो समझती है कि हमारे प्रियतम सुखी है, है ना। तो श्री कृष्ण अपना आनंद प्रकाशित करते हुए शाम को लौटते हैं, यह दिखाते हुए कि निर्विघ्न हम गऊ को चरा करके आ गए, गऊ पर कोई संकट नहीं आया, वन में गऊ खूब अच्छी तरह से चर चुकी हैं, हम भी आनंद में हैं। इस तरह गाते बजाते हुए ब्रज में प्रवेश करते हैं। और कई ऐसे पशु भी होते हैं जो ब्रज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वन में नहीं जाते हैं, तो उनको हर्षित करते हैं बांसुरी बजा बजा करके, सुनते हैं कृष्ण आ गए। नहीं तो सबको चिंता रहती है कि वन में गए हैं, पता नहीं क्या होगा, बहुत शोक में दिन बीतता है। गोपियां तो यहां तक कहती हैं कि चलस जद ब्रजा चार यन पशु नलिन सुंदर नाथ ते पदम शिल तृणाकुर कलिलता मन कांत गच्छति। हे कांत, हे प्रियतम, दिन के समय में जब आप गौवे चराने के लिए जाते हैं तो उस समय हमारे हृदय में इतनी पीड़ा होती है कि आपके कमल जैसे सुकोमल चरणों में कांटे चुभते होंगे, पत्थर लगते होंगे, उस समय हमारा मन बेहोश हो जाता है। ये तो रात्रि का समय है, आप रात में कहाँ कहाँ वन में भटक रहे हैं, जल्दी प्रकट हो जाइए, जल्दी आ जाइए। गोपी गीत में गा रही हैं गोपी जन, रासलीला में जब श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए थे, तो कहती हैं जब दिन में हमें इतना शोक होता है तो ये तो रात्रि का समय है, आप कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, आप जंगल में मत रहे, आप प्रकट हो जाइए, आप आ जाइए जमुना के पुलिन पर, आप क्यों दुख भोग रहे हैं। इसी को वास्तव में प्रेम कहते हैं। प्रकट रूप से श्री गोपी जनों का कृष्ण से कोई संबंध नहीं था, ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण उनके पति थे और इसलिए चिंता कर रही हैं, लेकिन इसको प्रेम कहते हैं। श्री कृष्ण वन में चले जाते थे और गोपियां उनके चरण की चिंता कर रही थी, चरण में कांटे लग होंगे, पत्थर चुभते होंगे, और इसे बहुत दुखी रहती है। इसी को कहते हैं वास्तव में प्रेम भक्ति। जहां प्रेम होता है वहां अनिष्ट की आशंका रहती है, अनिष्टा संकीर्णी बंधु हृदयानी। कालिदास महाकवि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि बंधुओं का हृदय अनिष्ट की आशंका से भरा रहता है। आप कभी देखे होंगे कोई व्यक्ति किसी को छोड़ने जाता है कहीं ट्रेन पर या बाईवान पर, तो वो कहता है पहुंचते ही फोन करना, कुछ लिखना, तुम ठीक से पहुंच गए। वो ठीक से तो पहुंच ही जाएगा, कोई एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बंधु का हृदय है वो मानता नहीं है, आशंका होती है भगवान सुरक्षित पहुंचा दे, ये करे। तो गोपियां इस तरह से जब ही श्री कृष्ण वन में जाते थे उसी समय से आशंका भर जाती थी, पता नहीं क्या होगा। और दूसरे कारण एक और था कि श्री कृष्ण पर अनेक संकट आते थे, कोई असुर आया तो कुछ हुआ, ये हुआ। उस दिन से सबको बहुत भारी शंका हो गई थी, जिस दिन बिना आंधी के दो वृक्ष गिर गए थे। गिराया था कृष्ण ने, लेकिन कोई इस बात को नहीं माना। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये कृष्ण जब खींचा उखल को तो उसी से दोनों वृक्ष गिरे। तो ब्रज के लोगों ने उन्हें डांट करके मना कर दिया, अरे चुप रहो। एक हरिश्वर जी कवि है, वो कहते हैं देखो सत्य बोलने वाले को लोग डांट रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि इसने जब खींचा उसी समय वृक्ष उखड़े। तो वो लोग मान लिया नहीं उखड़े होंगे उस समय, लेकिन उखाड़ा होगा कोई दैत्य, ये नहीं उखाड़े। ये छोटा सा बच्चा क्या उखाड़ेगा वृक्ष, ये क्या उपाड़ेगा, इसके खींचने से कैसे गिर सकते। तो वृक्ष जब गिर गए बिना आंधी के, तो उसी दिन से बहुत भारी मन में शंका हो गई ब्रजवासियों का, इस बच्चे को मारने के लिए कोई न कोई उपाय ऊपर से हो रहा है, भूत या दैत्य दानव कुछ उपाय कर रहे हैं, इसलिए इस स्थान को छोड़कर भाग जाना चाहिए। उपनंद महाराज ने कहा था कि हाँ इस स्थान को छोड़ करके चले वृंदावन, लेकिन वृंदावन में भी विपत्तियां आती रही और खासकर कृष्ण को मारने के लिए। तो गोपियां सोचते थे जब कृष्ण घर में सुरक्षित हैं, उस समय तो इनको मारने के लिए इतनी विपत्ति आती, ये जा रहे हैं वन में, वन भयंकर स्थान है और इतना सुकुमार हमारे प्रियतम, इतना सुकुमार, इनको कठोर हवा लगेगी, घाम लगेगा, कंकड़ पत्थर चुभेंगे, हम कैसे जिएंगे इसको देख करके सुनकर। वो नहीं चाहते थे कि किसी दिन गाय चराने जाए, तो इसलिए शाम के समय उनको बहुत आनंद आता था। ऐसे सबको आनंद आता था श्री कृष्ण को देख करके, लेकिन फिर भी गोपी जनों को बहुत अधिक आनंद आता था सबकी अपेक्षा। तो वर्णन करते हैं, पित्वा मुकुंद मुख सारघ मक्षी भिंगई तापम जहुर विरह जम ब्रज जोषित हमी। ब्रज जोषित, ब्रज की नारियां विरहजम तापम जहुर अहनी, दिन के समय जो विरह का ताप था उस ताप से भी मुक्त हो गई, जलन जलन थी हृदय में। कैसे दूर हो गई जलन, मुकुंद के मुख सारग को पी करके, श्री कृष्ण के सौंदर्य को, प्रफुल्लित मुख की शोभा को अपनी आंख रूपी बर्तन से पी करके गोपियों की जलन मिट गई, बहुत सुखी हो गए। और श्री कृष्ण भी अपने नेत्रों के इशारे से उनका उनका स्वागत करके और घर में प्रवेश किया। वे श्री कृष्ण को देख रहे थे और श्री कृष्ण भी हंसते हुए प्रत्येक गोपी पर मुस्कुरा करके देख करके कुछ इशारा करके कुछ संकेत करके और इस तरह स्वागत करते थे प्रतिदिन। ये भगवान की लीला। मैं शुरू में ही नेत्रों से मिलन न किया, किसी संकेत करते थे रास में चलने का, किसी को कुछ किसी को कुछ, इस तरह से गोपियां श्री कृष्ण के नेत्रों से नेत्र मिला करके परम सुखी हो जाती थी। तो ये श्री कृष्ण के लौटने की लीला है। अच्छा, और अब दोनों माताओं की सेवा का वर्णन कर रहे थे। वे दिन भर व्याकुल थी, तड़प रहे थे कि आज कृष्ण बलराम नया नया गाय चराने गए, उत्कंठित थे कब लौटेंगे कब लौटेंगे। तो तयोर जसोदा रोहिणो पुत्रो पुत्र वत्सल यथा कामं यथा कालं व्यधत्ता, ऐसे खिलाएंगे ये वस्त्र पहनाना, ऐसे स्नान कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दिन भर इसी में व्यस्त थी और विरह से कातर थी। तो जब ये लौटे तो यथा कालं यथा कामं, श्री कृष्ण बलराम की इच्छा अनुसार और उनकी कामना के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार और काल के अनुसार जो कुछ जरूरी था वो दी, उसी का वर्णन कर रहे हैं आगे। सबसे पहले गता ध्वान श्रमो तत्र मज्जनन मर्दनाद्रि, सबसे पहले स्नान कराए, दोनों माताओं ने स्नान कराया बच्चों को। आजकल की माताएं शाम को तो स्नान नहीं कराती हैं बच्चों को ना, वो सवेरे करा दे यही ज्यादा है। और दिन भर स्कूल से आया, कोई दुकान से आया, फैक्ट्री से आया, सब जगह से, शाम को स्नान बहुत जरूरी है। माता जसोदा स्नान करा रही है, कृष्ण उस समय 6 वर्ष के हैं, 7 वर्ष के हैं, वन से लौटते हैं स्नान, पहले मार्जन के पहले धूल झाड़ करके किसी बहुत फाइन कपड़े से माँ यशोदा धूल झाड़ रही है, कृष्ण का केशों का धूल झाड़ रही थी, धूल झाड़ करके देह का धूल झाड़ी, और इसके बाद उन्मर्दन के उबटन लगाई अंग में, खूब बढ़िया से उबटन आदि लगा करके इसके बाद स्नान कराए, स्नान करा करके तो सुंदर वस्त्र दी पहनने को। श्री बलराम जी नीला वस्त्र पसंद करते थे और श्री कृष्ण पीत वस्त्र, तो वस्त्र पहन लिए। इसके बाद चंदन का तिलक लगाया गया, गहना पहनाया गया, वन में तो ज्यादा पुष्पों का गहना पहनते थे, घर पर आने पर रत्न का गहना पहनते थे, और इसके बाद माताओं ने खिलाया पिलाया, स्नान करने के बाद खाने को दिया। बच्चों का ऐसा नहीं कि बिना स्नान किए खा लो, इतना मेहनत करके हैं फिर भी स्नान करके खाने को दिया गया। जथाकालम जथाकामम, जथाकाल संध्या के समय क्या खाना देना चाहिए उसके अनुसार दिया। सब वैदिक शास्त्र में आयुर्वेद में लिखा गया है कि शाम को क्या खाना चाहिए, रात्रि में क्या खाना चाहिए, सवेरे क्या खाना चाहिए, सब कुछ लिखा गया, तो उसको जथाकाल कहते हैं। शाम के समय क्या खाना देना चाहिए उसके अनुसार दिया, और जथा कामम आलसो, जथा कामम का अर्थ है कृष्ण बलराम जो पसंद करते थे वह भी, तो हो सकता है वो काल से भिन्न भी पसंद करते हैं। और बच्चे हैं, देश काल का नियम क्या लगेगा उन पर, या शास्त्र का नियम क्या लगेगा, बच्चों की रुचि होती है, उनकी रुचि के अनुसार भोजन दे उनको, तो खा लिए। खाने के बाद कुछ देर बैठे, इसके बाद उन्हें नींद आने लगी, रात्रि आ गए थे, दोनों भाई ऐसे झपकी लेने लगे, तब माता यशोदा ने सुलाया उनको, गोद में लेकर के सो गए कृष्ण को, और रोहिणी को गोद में लेकर, रोहिणी श्री बलराम जी को गोद में लेकर के सो गए। तो इस प्रकार वरसज्जायाम दूध के फेन के समान कोमल और उज्जवल सज्जा पर कृष्ण शयन किए। दूध का फेन देखे है ना, दूध का फेन जो गाय दुहे हैं वे ज्यादा जानते हैं उनके पढ़ने से, हम लोग देखे हैं दुहे हैं, तो वो दूध का जो फेन गाज होता है बहुत कोमल होता है और बहुत धवल उज्जवल, तो श्री कृष्ण का बेड ऐसा था, कोमल और बिल्कुल स्वच्छ धवल बेड, उस पर सोए दोनों भाई। इस प्रकार से श्री कृष्ण की लीला है। एक दिन की स्थालीपात न्याय से लीला सुनाए, इसी तरह से रोज समझना चाहिए, सुलाने की, खिलाने की, नहवाने की जो भी लीला है प्रतिदिन की है, वृंदावन में प्रवेश की, वृंदावन में पक्षियों के अनुकरण आदि की, केवल धेनुकासुर वध की लीला है वो केवल एक दिन की, दूसरे दिन दूसरी लीला, तीसरी लीला, इस तरह से लीलाएं बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो प्रतिदिन होती थी। प्रतिदिन श्री कृष्ण इस तरह वृंदावन में प्रवेश करते थे और क्रीड़ा करते थे। तो अब आगे कालिय दमन की लीला का वर्णन किया जाएगा। काली एक बहुत विषधर सर्प था, जमुना के हरद में रहता था, श्री कृष्ण ने उसको निर्वासित किया, निकाला वहां से, उसका दमन किया, कालिय दमन विधान। श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं में यह लीला भी बहुत सुंदर है, तो इसे तो हम कल से प्रारंभ करेंगे, आज तक पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए कल चालू करेंगे, कल लगभग दिन भर में पूरा करेंगे। हरे कृष्ण, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, प्रश्न पूछा जा सकता है।
कृष्ण की लीला नित्य लीला कहलाई जाती है
जी,
तो कृष्ण की लीला अभी भी कोई एक प्लेनेट पर चल रही है?
हाँ, नहीं, सभी प्लेनेट में, सभी ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं चलती रहती हैं।
और उनके जो पात्र होते हैं वही होते हैं या दूसरे जीव इसमें प्रवेश करते हैं?
नहीं, प्राय वही होते हैं और कुछ जीव जाते रहते हैं नित्य लीला में साधन करके, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं, प्राय वही रहते हैं। ऐसे प्रवेश होता है जिसे नित्य लीला प्रवेश कहते हैं, नित्य लीला प्रवेश से प्रभुपाद जी के लिए बोला जाता है, और भी उच्च कोटि के वैष्णव जो है उनके लिए बोला जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन है कि ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया शंकादिक पर, तो क्रोध को तो दबा लिए लेकिन उनके नेत्रों से क्रोध प्रकट हो गया, तो क्रोध ही एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो रो रहा था तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा रुद्र, तो वही रुद्र शिव जी हैं जो इस समय सृष्टि के। यद्यपि पद में भक्ति में ब्रह्मा जी से बढ़ करते हैं, लेकिन नाता में वे ब्रह्मा जी के पुत्र। जैसे आज कोई है, हो सकता है कि उसके पिताजी डॉक्टर ना हो लेकिन वो पढ़ लिख करके डॉक्टर हो जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए तो पुत्र ही है। इस तरह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं शिव जी, यही भागवत में लिखा गया है और सब जगह उनको कहा भी गया है। बिरिंच बैरिंच सुरेंद्र बंदितम, बिरिंच ब्रह्मा जी को कहते हैं और बैरिंच मतलब बिरिंच का पुत्र शिव जी को कहा गया, यही सब जगह क्रम बताया गया है श्रीमद् भागवत। ब्रह्मा जी का सभी आदर करते हैं, कई बार श्रीमद् भागवत में वर्णन है भगवान शिव ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, कई बार वर्णन किया गया। ये ब्रह्मा जी का पोजीशन है, सबके बड़े गुरु हैं, सबके पिता है। ब्रह्मा जी के पिता साक्षात भगवान है।
महाराज, भगवान जब आते हैं विभिन्न कल्प में तो कि एक ही किस्म की लीला करते हैं, जो लीला हम जानते हैं वही को दोहराते हैं?
नहीं नहीं, भगवान के जैसे सौंदर्य की लीला है, अपने परिकरों के साथ जो लीला है वो तो वही करते हैं, लेकिन असुर बध आदि जो लीला है वो भिन्न भिन्न कल्प में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, एक नहीं होता है। जैसे कोई जरूरी नहीं कि हर एक कल्प में कंस होगा या हर एक कल्प में पुदना होगी, ये होगा, ये जरूरी नहीं, लेकिन श्री कृष्ण का बांसुरी वादन नृत्य गीत आदि तो जम का त्यों होगा, रास विहार आदि। अपने परिकरों को लेकर भगवान इस जगत में आते हैं दिखाने के लिए जीवों को कि देखो हमारे साथ रहने वाले अन्य जीव कितने सुखी हैं, तुम भी चाहो तो मुझसे प्रेम करके मुझे समर्पण करके मेरे नित्य लीला में शामिल हो सकते हैं। तो अपना सुख बताने के लिए भगवान आते हैं इस जगत में, लेकिन असुर संहार आदि की जो लीला है भगवान की, वो तो हर एक कल्प में भिन्न भिन्न होती है, बदल जाती है। तो उस युग में कोई बदमाश होते हैं तो उनको भगवान मारते हैं, कि हर एक युग में एक ही व्यक्ति आवे ऐसी बात नहीं। क्यों? क्योंकि वे मुक्त हो जाते हैं भगवान के मरने से, भगवान के धाम में चले जाते हैं, तो फिर दुष्टता करने के लिए तो यहाँ आएंगे नहीं, बदल जाते हैं लीला।
भगवान से लड़ने के लिए भी तो उन्हीं के
हाँ, कभी कभी
अलग अलग कल्पों में भी वही आते हैं या
नहीं? जैसे कंस था तो भगवान की लीला से नहीं आया था, वो कालनेमी नाम का असुर था जिसको देवासुर संग्राम में भगवान ने मारा था। वो ऐसा भगवान की लीला से आने वालों में हिरण्यकश्यपु था, हिरण्याक्ष था, शिशुपाल और दंतवक्त, बाकी लोग सब यहीं के थे। उन लोगों के लिए तो स्पेशल बात थी, वो आए थे यहाँ पर भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए, और इसीलिए उनके भी सिद्धि ने नारद जी से पूछा राजस्वीय सभा में कैसे आए, क्यों आए, कैसे आए। अन्य लोगों के लिए तो नहीं कहा गया, अन्य लोग तो यहीं के थे, मारे गए अब भगवान के धाम में चले गए, ऐसा वर्णन आता।
छोटी सी पूछी थी, क्या नारद जी यही ब्रह्मांड में घूमते हैं ना कि सारे सृष्टि के सारे ब्रह्मांड में घूमते हैं कृष्ण कथा प्रचार करते हैं?
पता नहीं, मैं कभी सोचा नहीं। तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं कोई इस विषय पर सोचा ही नहीं और कुछ इस तरह का पढ़ा भी नहीं, लेकिन एक ब्रह्मांड में ही केवल घूमे तब भी ये बहुत है, बहुत विस्तृत ब्रह्मांड है। और हो सकता है कि वे दूसरे रूप से दूसरे ब्रह्मांड में होंगे, लेकिन एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा रहते हैं, एक शिव जी रहते हैं, एक इंद्र रहते हैं। तो इस तरह से प्रचारक नारद भी दूसरे होंगे दूसरे ब्रह्मांड में, कोई जरूर नहीं कि एक व्यक्ति ही दूसरे ब्रह्मांड में भी घूमेगा।
शंकर भगवान अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग?
जी हाँ, अलग अलग है। किसी किसी समय स्वयं भगवान ही शिव जी के रूप में होते हैं, किसी किसी समय में किसी विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। वही फर्क है जो मैं पहले बताया। सदाशिव का मतलब है जब भगवान अपने को उस पद पर करते हैं, अपने को मैनिफेस्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो उनको सदाशिव कहते हैं। उनमें और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं। और शिव या सदाशिव उन्हीं को कहते हैं, लेकिन सदाशिव खास अर्थ रखता है जो भगवान विष्णु ही शिव जी के पद से काम करते हैं, उनको सदाशिव कहते हैं। बाकी किसी विशिष्ट जीव में भगवान आवेशित होते हैं, उनका शक्ति आवेश होता है, तो उसको शिव कहते हैं। स्वयं भगवान अवतरित नहीं होते हैं उनमें, किसी जीव में शक्ति देते हैं संघार करने के लिए, ऐसा चैतन्य चरितार्थ में वर्णन किया गया है। लेकिन जो कुछ भी हो, जीव जीव में भी भेद है। श्रीपद मध्वाचार्य जी ने फिलॉसफी दिया है और इसको स्वीकार भी किया गया है हमारे कल द्वारा, कि अगर शिव जी के पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति जीव है तो ये हम लोग जैसे जीव नहीं है। जीव जीव में भी बहुत भेद है। कई प्रकार के ऐसे जीव हैं जो लगभग भगवान के समान हैं, उनमें भगवतीय गुण बहुत है। तो शिव जी इस तरह के व्यक्ति हैं जिनको आप जीव भी नहीं कह सकते। और इसके साथ ही साथ भगवान भी नहीं कह सकते, जीव भगवान के मध्य की दशा। ऐसे व्यक्ति को भगवान इंपावर्ड करके शिव जी के पद पर रखते हैं, तो उनको शिव कहा गया है। तो अगर उनको भगवान कहा जाए तो कोई क्षति नहीं, ठीक है। उचित तो यही है कि भगवान ही कहा जाए, क्योंकि जीव तो कहा नहीं जा सकता। शिव को जीव कहना है तो ये तो बहुत भारी अपराध हो जाएगा, और यदि उनको भगवान कहें तो बल्कि ठीक है। परंतु जब वास्तविक भगवान के स्वरूप गुण धर्म आदि की व्याख्या की जा रही हो और उस समय जब शिव जी के तत्व को बताना हो, तो शिव जी को भगवान के दास रूप में बताना चाहिए, वे उनके सेवक हैं। लेकिन जब दोनों में भेद करके बात आप नहीं बता रहे हैं, ऐसे जनरल नहीं, नाम में भेद है। एक ही व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए कोई घर पर है तो उसका दूसरा नाम होगा, हाई कोर्ट में चला गया तो दूसरा नाम होगा, जज नाम होगा, जो कुछ नाम होगा। तो शंकर का भी अर्थ होता है शांति देने वाला, सम कर, सम माने शांति, कर माने करने वाला। शिव का भी वही अर्थ होता है, लेकिन उस शंकर का अर्थ होता है, शंकर जो शब्द है, शांत कर देने वाला, मतलब मार काट करके ठीक कर देने वाला, प्रलय करने वाला, शंकर का अर्थ होता है। और शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप, जिनका सब कुछ मंगलमय है, जिनका नाम मुख है, एक मुख से निरंतर राम राम रटते रहते हैं निरंतर। तो भक्ति के आचार्य हैं। जो कुछ भी हो, भगवान कृष्ण से वे भिन्न नहीं है, जहाँ भी देखिए नाना अपराध का वर्णन किया गया है, तो संस्कृत के मूल श्लोक में यही लिखा गया है कि शिव जी के नाम को भगवान के नाम से भिन्न समझना ही अपराध है। इस तरह का मूल श्लोक श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद में इसको स्पष्ट किया है। शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान के समान समझना अथवा इनडिपेंडेंट समझना, उन्होंने इसकी रक्षा की है अनुवाद में, ठीक रखा है। जो लोग यह कहते हैं कि शिव जी भगवान है, कोई भेद नहीं करते हैं, तो वो भी गलत करते हैं स्वरूप विचार करके। और जो लोग ये कह देते हैं कि ये भगवान नहीं है ये जीव है, तो वो भी अपराध करते हैं। इन दोनों बातों को एडजस्ट करना चाहिए, ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी जीव के द्वारा देवताओं की अवज्ञा तो होनी ही नहीं चाहिए, और नाम अपराध से बचने के लिए बात की जा रही है, अपराध करने के लिए नहीं। अगर हम भगवान शिव का आदर करें, उनको भगवान के समान समझें, तो ये अपराध नहीं है। लेकिन बहुत हीन समझ लेंगे तो ये अपराध है, संभावना है ये अपराध है कि नहीं। तो अपराध से हमारे नाम जब का प्रभाव नलिफाई हो सकता है, इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध से बचने के लिए नाम अपराध है लिखा गया है, न कि करने के लिए।
भगवान शंकर की भक्ति करने से क्या?
मान करके, गुरु मान करके उनसे सहायता लेना चाहता है, तो भगवान शिव सब तरह से सहायता करते हैं। जैसे मार्कंडे जी की सहायता किया उन्होंने, मार्कंडे जी को उन्होंने भक्ति दिया भगवान की, और कई ऐसे भक्त हैं जिनको दिया है। लेकिन जब उनको ही सुप्रीम मान करके और उनसे अर्थ धन आदि कामना जीव करता है, तो उसकी शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि भगवान शिव अंततः तमोगुण के साथ हैं, तमोगुण को अधिकार में करके जगत का प्रलय करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से उनका कोई भजन करे, उनको ही सब कुछ मान करके, तो उसकी शुद्धि बहुत कठिन है, संसार बंधन से मुक्ति क्या होगी और नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब उनको गुरु मान करके, परम भागवत मान करके हम उनका भजन करते हैं और उनसे हेल्प चाहते हैं, तो वो बहुत जल्दी हेल्प करते हैं, भगवान की भक्ति दान करते हैं, जीव मुक्त हो जाते हैं उस तरह से। अब जैसे अब लोक में ही देखिए, जो लोग गुरु को भगवान मान लेते हैं टोटली, वास्तव में पाखंडी होते हैं, पाखंडी हो ही जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा, मैं नॉन वैष्णव संप्रदाय की बात कह रहा हूँ, कि गुरु को ही सब कुछ मानते हैं, गुरु के अलावा भगवान कृष्ण को विष्णु को जानते ही नहीं, वो क्या चीज। तो होगा क्या, वे और अधम योनियों में जाएंगे। लेकिन जो लोग गुरु को पूजते हैं, आदर करते हैं, इसलिए कि गुरु भगवान कृष्ण का एक भक्त है और हमको कृष्ण की भक्ति देगा, गाइड करेगा, कृपा करेगा, तो इस तरह से यदि गुरु की पूजा करते हैं, गुरु से कृपा चाहते हैं, तो ठीक है, तब तो गुरु उनको हेल्प करेगा। लेकिन गुरु को ही सब कुछ मान लिए तो गए, किसी काम के नहीं गए। वो चाहे वैष्णव भी हो चाहे कुछ भी हो, वैष्णव का तो मतलब ही है विष्णु का, कृष्ण का। तो आपने देखा, हम लोग वैष्णव पंथ के हैं, तो किसी भी वैष्णव पंथ में सिखाया जाता है विष्णु का नाम जपना है, विष्णु का श्री विग्रह रखना है, विष्णु की आराधना करनी है, ये करनी है, वो करनी है। गुरु मार्गदर्शन का काम करते हैं, मीडियम साधन है, इस तरह से हेल्प लिया जाता है, तो सब तरह से ठीक है संबंध। तो वही बात भगवान शिव के साथ भी है। शिव जी तो सबसे बड़े वैष्णव हैं, भगवान के भक्तों में सबसे प्रधान हैं। वो कैसे स्वीकार करेंगे कि उनको ही कोई साक्षात भगवान कहने लगे, उसे तो प्रसन्न भी नहीं होंगे। उनसे भक्ति का वर मांगना चाहिए, वे देते हैं।
शिव जी दास होते तो राम की पूजा करते थे।
हाँ,
शिव जी भगवान के दास हुए तो राम भगवान की पूजा करते थे शिव जी की।
राम भगवान की पूजा करते थे। अच्छा, पूजा करते थे, उस पूजा का दूसरा अर्थ है
शिव जी को भगवान मान के पूजा करते।
नहीं, राम शिव जी की पूजा करते थे तो भगवान मानकर नहीं करते थे, भगवान श्री राम मनुष्य की लीला कर रहे हैं तो मनुष्य का धर्म है देवताओं का आदर करना, तो मनुष्य का धर्म सिखा रहे थे, भगवान कहकर के तो नहीं पूजा है। यदि मान लीजिए आप अपने दास को अपने नौकर को घर में खिला रही हैं, आप भोजन बना करके उसको परस रहे खिला रहे तो वो भी एक पूजा हुई, तो आप खिला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो स्वामी हो गया। आप अपने बच्चे को लेकर के कंधे पर मान लीजिए खिला रही है, गोद में खिला रही है, सिर पर रखी है, इसका मतलब नहीं कि बच्चा ही माँ हो गया। बच्चा बच्चा है, शिव जी का आदर करना एक कर्तव्य है, मनुष्य को करना चाहिए, उसकी शिक्षा देने के लिए भगवान राम ऐसा आचरण कर रहे हैं। अपन ही आचार्य धर्म जीवे सिखाया, शिव जी की पूजा किए तो उन्होंने सिखाया कि इस तरह से भगवान शिव का आदर करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। सिखाने में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ओ श्री राम जो है उनके दास हो गए, भगवान सिखाते हैं इस तरह आचरण करते। वो तो भगवान श्री राम की छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण तक पूजा किए, शिव जी की पूजा किए हैं, दुर्गा जी की पूजा किए हैं। ये मनुष्यों को इस तरह से गाइड करने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अधिकतर भगवान विष्णु की पूजा किए हैं, ये सिखाने के लिए कि सबको वैष्णव होना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। परंतु ये स्वयं भगवान है, विष्णु भगवान तो इनके एक विलास है, अंश है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं है आचरण करते हैं। गीता में खुद ही कहे हैं कि यदि मैं इस तरह का आचरण न करूं, कर्म न करूं, तो मैं ही जनता का नाश करने वाला बन जाऊंगा, हमारे देखा देखी सब लोग ये कर्म नहीं करेंगे, इसलिए मैं कर्म करता हूं। तो कर्म में देवताओं का आदर करना सिखाना इस तरह की बोलना बहुत जरूरी है। अरे यहाँ देवता की बात छोड़ दीजिए, लोग तो लीडरों का आदर करते हैं। दो चार वर्ष के लिए लीडर हो गए, कोई मंत्री हो गए तो उसकी जय जयकार करते हैं, देवताओं का क्यों नहीं करेंगे, है कि नहीं? वो तो भगवान के प्रिय भक्त हैं और बड़े बड़े पद पर हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका इलेक्शन से बनाया गया है या हम हटा देंगे रंज होकर के। अभी वर्षा हो रही है, ये कौन मंत्रिमंडल कर रहा है वर्षा बताइए, कोई सरकार कर रही है, लेकिन एक देवता है जो कर रहा है, उसके हाथ में है, वो है इंद्र, भगवान ने उनको अधिकार दिया है। लेकिन जब भगवान मनुष्य बनकर आते हैं, लीला करते हैं खास करके मनुष्य की, तो मनुष्य के द्वारा देवताओं का इस तरह आदर होना चाहिए, माता पिता का ऐसे आदर होना चाहिए, गुरु का ऐसे आदर होना चाहिए, जनता का इस तरह पालन करना चाहिए, भगवान इस तरह सिखाते हैं। तो सिखाने का मतलब ये नहीं कि वो वही हो गए, वो तो भगवान शिव की पूजा किए, भगवान श्री रामचंद्र माता कौशल्या के गर्भ से जन्म भी लिए, तो इसे क्या कहा जाएगा कि वास्तव में कौशल्या ने उनको जन्म दिया, उसके पहले नहीं थे,
जीव हो गए
या जीव हो गए, ऐसी तो बात है ना, वो प्रकट होते हैं। जैसे पूर्व दिशा को माँ बना करके सूर्य प्रकट होता है, सूर्य प्रकट हो रहा है, पूर्व दिशा ने जन्म नहीं दिया वास्तव में। इसी तरह से भगवान देवताओं की पूजा करे, आदर करे, उससे वो छोटे नहीं हो जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यदि अर्जुन का सारथी बनते हैं, युधिष्ठिर महाराज का दूत बनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनसे छोटे हो गए। जब ही जरूरत पड़ी तब ही अर्जुन कह दिए शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सिखाइए। ओ क्या हो गया, सखा कह रहे कि मैं शिष्य, क्योंकि कृष्ण वास्तव में वो सारथी बनकर रहे चाहे कुछ भी बनकर रहे, कृष्ण कृष्ण है। तो उसी तरह से कृष्ण यदि शिव जी की पूजा कर रहे हैं फिर भी कृष्ण कृष्ण है, शिव जी उनके दास हैं, किसी खास पर्पस को सिखाने के लिए जगत में भगवान ऐसा करते हैं। तो भगवान श्री राम जरूर है शिव जी की पूजा किए हैं मनुष्यों को एक शिक्षा देने के लिए, ऐसा नहीं कि ये पुजारी हैं और वे पूज्य हैं भगवान के लिए।
हाँ, पश्चिम लोग भगवान मानते
हैं। किनको?
पश्चिम लोग
किनको? अच्छा हाँ वास्तव में उन्होंने तो अपने श्रीमुख से कहा है कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, शायद उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि मैं स्वयं भगवान हूँ। मानने वाले क्यों मानने लगते हैं, बहुत का कहना कठिन, क्यों मानने लगते हैं? उनकी बात तक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि दाऊ साहब नोट की लो, और वो लोग किले के अलावा कुछ जानते नहीं है, गाय मार करके खाते हैं। तो प्रकट है कि वे उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं। जब उनकी बात उनको समझ में नहीं आए तो वे कैसे समझ में आ जाएंगे उनको? तो उनकी बात नहीं माने और उनको कहते हैं कि आप ही भगवान हैं। ये तो प्रकट है कि ऐसा कहने वाले लोग कोई उचित बात नहीं कहते। भगवान का भक्त होना भगवान होना दोनों में भेद है। हम लोग प्रभुपाद जी को मानते हैं, प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाने वाले हैं, कृष्ण के प्रिय दास हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कहते हैं कि वे कृष्ण हैं, है ना? और न प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा कहा। साक्षात हरित्रेण समस्त शास्त्र उक्तस तथा भाव्यते सभ्य, सभी शास्त्र कहते हैं और सभी साधु भी ऐसा ही मानते हैं कि गुरु साक्षात हरि है, किंतु प्रभु या प्रिय वतस्य, किंतु सभी साधु और सभी शास्त्र अंत में यही फाइनल देते हैं कि नहीं नहीं, वो तो कृष्ण का प्रिय है, वो कृष्ण नहीं। इस तरह से कहते किंतु प्रभोर या प्रिय एवं, कि तो प्रभु का प्रिय है, प्रभु नहीं है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना कर रहा हूं। किंतु शब्द जो है वो शास्त्रों का और साधुओं के वक्तव्य का विरोध नहीं कर रहा है, उसका भाव यह है कि जो शास्त्र और जो साधु कहते हैं कि गुरु साक्षात हरि है, वही साधु और वही शास्त्र फाइनली कहते हैं कि नहीं वो तो प्रभु के प्रिय दास, ऐसे गुरु के चरणों की मैं वंदना कर। तो क्राइस्ट वास्तव में भगवान के प्रिय दास हैं, भगवान के प्रिय पुत्र हैं, और उनको कह करके कि यही भगवान है, पता नहीं इसके पीछे लोगों का क्या अभिप्राय है। हम तो इस विषय में पढ़े भी नहीं, बहुत सुने भी नहीं, लेकिन जहां तक थोड़ा सुने हैं प्रभुपाद जी के मुख से और कुछ पढ़े हैं, तो उसके अनुसार तो यही है कि वे प्रभु के दास हैं, प्रभु नहीं। वो तो ठीक है, अगर किसी जीव के दुख को मिटाना चाहते हैं तो उनकी भावना ठीक है, परंतु ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि रियली जीव के दुख का मूल क्या है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख है। जीव के दुख का मूल कारण है भगवान का स्मरण नहीं होना। तो भगवान का ज्ञान देना यह बहुत बड़ी सेवा है मानवता की। इसके साथ ही साथ भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करना यह भी सेवा है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, यह भी सेवा है। किसी को प्रसाद देना, वस्त्र देना, रोगी आदमी को दवा देना, सहारा देना, ये ठीक है, बहुत अच्छा है, पर इसके साथ ही साथ भगवान की भक्ति का प्रचार करना, दान देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। इस सेवा के साथ और सेवा की जाती है तो वो सार्थक है वास्तव में। लेकिन लोग कहते हैं कि हम जनता की सेवा करते हैं, जनता की सेवा क्या है उसको जब हम कृष्ण से नहीं जोड़े, नहीं बताए, तो उसकी असली सेवा हम कर नहीं पाए। तो उनको बताना चाहिए कि भगवान से तुम्हारा नित्य संबंध है और भगवान ही हवा पानी पृथ्वी सब दे रहे हैं, दूसरा कोई सेवा भी क्या कर सकता है। और की बात छोड़ दीजिए, माता पिता का उदाहरण लीजिए, माता पिता एक बच्चे की क्या सेवा कर सकते हैं? आज दो माता पिता मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं, हो सकता है दो चार महीने के बाद उनका देहांत हो जाता है, फिर भी बच्चा जीवित रहता है, हवा में सांस लेता है, पानी पीता है, कुछ खाता पीता है। माता पिता तो कुछ दिए नहीं उसको, हवा तो माँ नहीं दे रही है ना, न पिता दे रहे हैं, न कोई सरकार दे रही है, तो जो मैं शुरू में बोल रहा था कि जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वे सब भगवान दे रहे हैं, इसलिए कि हमारे साथ उनका दृढ़ संबंध है, तो इन बातों को उन्हें बताने की आवश्यकता है, तुम यह करो यह गलत काम नहीं है, लेकिन भगवान को विस्मरण करके करोगे तो यह भी गलत हो जाएगा। भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए, संबंध बढ़ाने के लिए, भगवान को समझने के लिए नित्य मंदिर में आने की आवश्यकता है। नित्य नहीं आ सके तो संडे को कम से कम आवे, मतलब यथाशक्ति जब भी समय हो तो आना चाहिए। अपने घर पर भी ठाकुर जी को रखना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि हम दूसरे की सेवा करते हैं, मंदिर में जाने की आवश्यकता है, तो इसका मतलब कि भगवान के साथ अपने संबंध को समझ नहीं रहे। रियली जो इस जगत की सृष्टि किए हैं, पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, उनके बारे में तो जानने की उत्कंठा होनी चाहिए, वो कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। एक साधारण प्रधान व्यक्ति आ जाता है, मान लीजिए राष्ट्रपति अमेरिका का है, आवे तो जो लोग नहीं देखे वो देखना चाहे भाई कौन है, कैसे हैं, कुछ सुनेंगे, क्या बोले, अखबार में छपता है, ये छपता है, तो भगवान के बारे में जो जगत को बनाए हैं, जगत के स्वामी हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या बोले हैं, क्या स्वभाव है, क्या रूप है, इसको तो देखने की उत्कंठा होनी चाहिए। यदि नहीं है तो इसका अर्थ कि कोई बुद्धि नहीं है वास्तव में।
इसी बात पे वो ये भी कई कई बार सुना है कि कहीं पे किताबों में वेदर्स में ऐसा लिखा नहीं है कि भगवान ने ऐसे कहा नहीं कि मंदिर आया करो, पढ़ा करो, चैटिंग किया करो, आप क्यों करते हो, भगवान तो नहीं कहते कि आप हमारी इतनी सेवा करो।
नहीं, भगवान ने तो कहा है, भगवान कहते हैं कि मेरे विषय में सुनो, मेरे विषय में पढ़ो, मेरे विषय में बोलो, साफ भगवान ने कहा है, और मुझे अर्पित करो, जत करोसि जदस्नासि जज होसि ददासि जत जत तपस्सि कौन्तेय तत्कृष्ण मद अर्पण। ये प्रश्न होगा कहाँ अर्पण करें। मान लीजिए आप तो इस समय अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, अगर बैठे ही रहें और भेंट हो जाए तो हम लाला करके सब कुछ दे देंगे, इसके बाद आप कहाँ रहेंगे, वहां नहीं पूछा गया है। लेकिन अन्य पुराणों में अन्य जगह पर ये वार्तालाप हुआ है, तो उसके लिए कई स्थान बताए गए हैं कि भगवान को यदि देना हो तो कहाँ कहाँ देंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें हाथ को देना है, कुछ को देना, पेट में देते हैं, पेट ऐसी वस्तु है जो सब जगह पहुंचा देती है, तो भगवान को देते हैं तो सबको मिल जाता है। लेकिन अब प्रश्न होता है भगवान को कहां से देंगे तो पहुंचेगा, तो श्रीमद् भागवत में उसके अधिष्ठान लिखे गए स्थान है कहां कहां भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु अग्नि अग्नौ, अग्नि में हम कुछ हवन करते हैं, पूजा करते हैं मंत्रों के साथ, तो भगवान के पास पहुंचता है। अर्चे अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं तो वो भगवान को मिलता है डायरेक्ट। वैष्णव की पूजा करते हैं तो वो भगवान को पहुंचता है। इस तरह से कई कई स्थान है, सूर्य में पूजा की जाती है तो पहुंचता है। स्थंडिल है, पृथ्वी की पूजा की जाती है, पृथ्वी में कृष्ण को मान कर पूजा की जाती है तो इस तरह से वो पहुंचता है। कहा ये बात कही गई है कि इस तरह मंदिर में आओ, पूजा करो, प्रणाम करो, माम नमस्कुरु मध्या जी, मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो, उसमें मन लगाओ, तो भगवान कहे हैं खोल करके। वो लोग क्या सोचते हैं, भगवान हमको फ्री कर दे, कुछ भी करना ना पड़े, जब मन करे तब जगे, जब जो करने का मन करे वो करे।
जनता ही जनार्दन
है, आज जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है, तो इससे भी सिद्ध होता है कि मतलब जनार्दन की सेवा ही लक्ष्य है ना। अगर ये कहें कि जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है तो जनार्दन को स्वीकार कर रहे हैं कि जनार्दन कोई है, अब उसकी सेवा क्या है, जनता की सेवा, लेकिन अंततः जनार्दन की सेवा ही मुख्य लक्ष्य हुआ उनका, है ना। अगर यह कहते कि जनार्दन की सेवा ही जनता की सेवा है तो जनता की सेवा मुख्य लक्ष्य होता उनका, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है तो इसका मतलब जनार्दन की ही वो सेवा करना चाहते हैं, मुख्य अर्थ यही हुआ। लेकिन उनका मानना है कि जनता की जब सेवा करेंगे तो इसी से कृष्ण खुश होंगे, परंतु कृष्ण क्या है, कैसे खुश होते हैं, जनार्दन कैसे खुश होंगे, क्या विधि है, इसको तो जानना चाहिए ना। अपने मन से तो विधि निकाल नहीं सकते हैं। अगर यह हुआ कोई बोले तो उसको कहे हाँ ठीक है, आप जनार्दन की सेवा करना चाहते हैं, तो जनार्दन बोले हैं अपने मुख से, उसको देखना चाहिए कि भाई किस बात में वो खुश रहते हैं। एक बात जरूर भगवान ने कहा है कि सभी जीवों में मुझको देख करके सबका सम्मान करना चाहिए, ऐसा वो अपने मुख से बोले। दूसरे जीवों के दुख को अपने दुख के समान, दूसरे के सुख को अपने सुख के समान समझना चाहिए, तो सही बात। लेकिन मूल संबंध भगवान से होना चाहिए, दूसरे जीवों में भगवान को देखना चाहिए, कृष्ण को देखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो कृष्ण को जानने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए मंदिर में आना, भागवत पढ़ना, सुनना, जप करना, आपस में भी मिलना कभी कभी वैष्णव का, ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी महीने में, सप्ताह में या 6 महीने पर ऐसा सम्मेलन करना चाहिए जिससे केवल भगवान की बात हो, भगवान के लिए मीटिंग हो रही है। जैसे जन्माष्टमी आती है, गौर पूर्णिमा आता है, और सब तो असल में जो लोग केवल जीव सेवा की बात करते हैं वो भगवत सेवा को टालने का प्रयास करते हैं कि टाल दे, वो समझते नहीं है संबंध वास्तव में। ये तो जीव सेवा, तो हम लोग फिर तो वास्तव में जीव सेवा ही कर रहे हैं, भगवान की सेवा क्या हम कर पाएंगे, न भगवान को कोई सेवा की जरूरत, उनको कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है हमारे देने से कुछ पूर्ति हो जाएगी, वो सुख से रहेंगे। जीव सुख से रहे यही भगवान की सेवा है, भगवान चाहते हैं कि जीव सुख से रहे, और जीव सुखी होगा कृष्ण से जुड़ने पर। तो मंदिर बनाना, सेवा पूजा की व्यवस्था करना, लोगों को मंदिर लाना, इस जीव को ही सुख हो रहा है। वास्तव में भगवान को इससे कोई खास सुख नहीं होता है, ऐसा नहीं भगवान भोग के बिना दुखी हैं और हम उनको अर्पित करेंगे तब वो खाएंगे, वो लक्ष्मीपति हैं, उनको वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीव उनको अर्पण करने का एक अवसर पाता है तो उस जीव को सुख होता है। किसी तरह से मंदिर आदि बनाना ये जीव सेवा ही है, जीव की सबसे बड़ी सेवा है वास्तव में। और जीव की सेवा सबसे बड़ी ये है कि वह श्री कृष्ण को जान जाए, कृष्ण हमारे बंधु हैं, हमारे त्राता हैं, हमारे प्रभु हैं, सब कुछ है, उनसे प्रेम करे, यही जीव का सबसे बड़ा उपकार है। तो उसको चाहे जीव सेवा कहें हम, चाहे भगवत सेवा कहें, दोनों एक ही वस्तु है। जी हाँ, तो स्वाभाविक है ऐसे जीव सेवा है। हाँ,
जिससे हम कह सकते हैं कि आपने जो भी कहा, अगर जीव जीव की सेवा करे तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं, जैसे इसमें भी कहा, उस हिसाब से एक अहंकार का मूल।
अगर कोई भी विचार मंदिर आने से रोक रहा है तो उस जीव की भी सेवा नहीं हुई वो तो कुछ भी नहीं है वास्तव में। हम भगवान की तरफ नहीं आ रहे हैं, दूसरों को नहीं ला रहे हैं, तो फिर वो सेवा क्या, तो कोई सेवा हुई नहीं। जी हाँ, और उल्टा उल्टा हो गया। और जीव की सेवा का जहां तक प्रश्न है, तो जीव की सेवा तो जीव कर ही रहा है, उसको सिखाना क्या है। कितने लोग कुकुर की इतनी सेवा करते हैं जितना आदमी की नहीं करते हैं, कुत्ता की सेवा करते हैं, तो सिखाना क्या है। कई लोग सवेरे कुत्ता को लेकर के घूमना चालू करते हैं, उसको हवा बतास लगे, ये ठीक से रहे, क्या सिखाना है, वो तो कर ही रहा है। सभी लोग अपने संतान की सेवा करते हैं, कोई कुत्ता की सेवा कर रहा है, कोई इसकी सेवा कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, ये क्या सिखाना है। जीव की इंद्रियां बनाई गई हैं ऋषिकेश की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। वास्तव में कृष्ण की सेवा से सबकी सेवा हो जाती है। अगर वास्तव में हम जीव की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान की सेवा करें, भगवान का आदर करें, सबका आदर हो जाएगा। भागवत में 2 उदाहरण दिया गया है, जैसे वृक्ष के मूल में हम जल देते हैं तो वृक्ष के मूल शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प सब में जल पहुंच जाता है। पेट को अन्न देते हैं तो वह अन्न हाथ में, पैर में, आंख में, सिर में, सब जगह पहुंच जाता है उसका रस।
पेट का ऐसा स्वभाव है कि उसको दिया जाएगा तो सबको पहुंचा देगा, और अन्य अंग जो है भोक्ता है नहीं, दूसरे जीव सेव्य है ही नहीं, सेवा क्या करेंगे। सेव्य जो होता है उसकी सेवा की जाती है। जैसे और कर्म करने वाले हैं, मान लीजिए हाथ काम किया, आंख काम किया, पैर काम किया, मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, थक गए, आपको भूख लग गई, तो किसी होटल में आप गए खाने के लिए, तो आंख कहे कि मैं रास्ता देख रही थी ड्राइविंग के समय, मैंने काम किया है इसलिए दो चार रोटी मुझमें दो, आंख में कान सुना है तो कान कहे कि हमारे अंदर दुख डालो या ये करो ये करो, तो उसे जो भी देख रहे हैं तो देखना बंद हो जाएगा, अंधा आदमी हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। ये भोक्ता है नहीं, भोक्ता है पेट। भोक्तारम जग्य तपसम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण भोक्ता है, सेव्य जिसको कहा जाता है, जिसकी सेवा की जा सकती है, वो भगवान है, और की सेवा की ही नहीं जा सकती। अगर हम उसकी सेवा करते हैं तो इसका अर्थ उसको उसका नुकसान कर रहे हैं, उसको मारने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए भोजन पेट को न देकर कि आप आंख में ठूसी है तो वो तो अंधा होना ही निश्चित है ना। तो कोई जीव भोक्ता नहीं है, सेव्य नहीं है, सेव्य भगवान है, और जीव और किसी का दास नहीं है, वो कृष्ण का दास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण की सेवा करते हुए कृष्ण की सेवा द्वारा और किसी की सेवा हो ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को भोजन देना है तो वो भोजन पहले हम भगवान को अर्पित कर लें और भगवान का प्रसाद उसको दे, कोई बात नहीं, लेकिन स्वतंत्र हम भोजन दे रहे हैं ठीक है, लेकिन वास्तविक धरातल पर वह उचित नहीं। जी हाँ, किसी को कपड़ा भी देना हो तो भगवान को अर्पण करके देना चाहिए, इस तरह से मतलब भगवान से संबंध करा देना चाहिए, उसको भी करना चाहिए, वो भी भगवान का है, वो भी सुखी नहीं हो सकता है भगवान से अलग हो करके। वृक्ष के मूल से किसी शाखा का उच्छेदन करके और उसको स्नान कराइए, जल में डालिए, वो सूख जाएगा। वृक्ष के मूल से किसी शाखा को काट करके आप गंगा जी में भी डाल दीजिए तब भी सूख जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि मूल से कट गया समूह।